गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
अपनी सोच से पाप मुक्त होने का ये फार्मूला अपनाया कि मैं खाना आज खाऊंगा नहीं, जो जिस खाना बनाने में पाप हुआ इसने फेंकना ठीक नहीं, इसको किसी साधु संत को खिला दूंगा मेरा भार उतर जाएगा। इस उद्देश्य से सारे भोजन को लेकर और साधु की तलाश में निकल लिया। पहले दिन तो परमात्मा थे जिंदा महात्मा के रूप में, और उस दिन जैसे हिंदू साधु होते हैं लाल कपड़े पहन लिए या सिर पर बाढ़ बूढ़ रखा लिया, यानी लाल कपड़े हो तो हम साधु मानते हैं गिरवे, ऐसी वेशभूषा बनाकर रूपांतर करके भगवान बैठ गए एक वृक्ष के नीचे। कबीर भगवान धर्मदास जी की दृष्टि गई, साधु बैठा है चल बनगी बात। वहां जाकर के वह थाली रखती भोजन रख दिया कि महाराज जी भोजन पा लो। परमात्मा बोले हाँ भाई धर्मदास भूख लगी है। उसने देखा भाई आदमी तो पहचाना नहीं मैंने, लेकिन मेरा नाम बता दिया कोई जान पहचान का साधु संत होगा, क्योंकि वो पहले बड़े भंडारे करते था, धार्मिक यज्ञ किया करता था भंडारे, हजारों साधु संत आते थे भोजन करने। तो इसलिए उसने सोचा कि कभी भोजन करने आए होंगे वहां पर, जानते होंगे मुझे। तो परमात्मा के पास अपना एक करमंडल था लोटा रखा था पानी का भराजल का, जो ही उसने रोटियों के ऊपर से पर्दा हटाया कपड़ा, परमात्मा ने अपने लोटे से जल उठाकर एक मंत्र सा बोलकर और थाली के उस रोटियों पर छींटे लगा दिए। उस छींटे लगाते ही एकदम जितनी भी रोटी थी सब्जी थी उन सब की चीटी बन गई, और अंडे मुंह में लेकर के वह काली थाली होगी इतनी भर गई उसमें। तब अपने उस वास्तविक रूप में आगे पहले वाले दिन तो जिंदा महात्मा के रूप में थे। तब कह रहे कसाई तेरे तक कसाई भी अच्छा, तुम्हें कहता हूं जीवन से नहीं करते, ये पाप का भोजन मुझे कराने आया था धर्मदास। जब देखा रे तेरा गजब है तो वही महापुरुष है, चरणों में पड़ गया रोए रोए सारी रात रो के काटी, करवट ले लेके हे भगवान बनेगी क्या, भक्ति मिली नहीं मेरा तब जीवन नाश हो गया। तो वह भूख मिटाई दाता ने, चरणों में गिर गया कि महाराज मेरे से गलती होगी और मुझे सत मार्ग बताओ। ऐसे चार पांच छह बार परमात्मा ने उनके साथ, क्योंकि ये काल है ये जल्दी सी टिकता नहीं, मन तो पुराना रंगा हुआ है, और वो तो ज्यादा ही शंका युक्त आदमी था, भ्रमित था, जिज्ञासु गणा था, भगवान का बहुत ही अच्छी आत्मा थी, उसके लिए परमात्मा ने बहुत लीलाएं की। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब थोड़ी सी आपको परमात्मा की महिमा सुनाते हैं गरीबदास जी की वाणी के माध्यम से, क्योंकि जैसे दास आपको बताता है कि जैसे वर्तमान में जो रामायण है वो तुलसीदास कृत है, और तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी हुई घटना रामायण की एज इट इज चित्रांत कर दी अपनी चौपाइयों में, तो उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी थी। इसी प्रकार गरीबदास जी को परमात्मा ने दिवदृष्टि दी थी, सतलोक ले गए थे, अपना वास्तविक स्थान दिखाया था, आंखों देखा परमात्मा का सारा हाल और परमात्मा से प्राप्त दिवदृष्टि से आगे पीछे की सब घटनाएं एज इट इज लिख दी, जो जहां जैसी बीती थी परमात्मा ने जो लीलाएं की थी। और जैसे आप बहुत बार बताता रहा दास के, जैसे संजय को दिवदृष्टि दी थी वेदव्यास जी ने, धृतराष्ट्र जी को महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में देख के वहां बताने की, बैठा बैठा वहां देख रहा था जैसे टीवी चलता सामने, तो वो दिवदृष्टि जो व्यास जी ने दी थी वह कुरुक्षेत्र तक काम करे थी, दिल्ली और कुरुक्षेत्र ईसाज्ञ नहीं था उसका ब्यौ था, वो इतनी ही दूरदर्शी थी। तो ये दूरदर्शी होती है दिवदृष्टियां। तो तुलसीदास जी ने केवल तीसरे यानी त्रेता युग तक का ही दिखा था, और कबीर परमेश्वर ने जो दिवदृष्टि अपने प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दी थी, उसने असंख्य जन्मों का पहले का और आने वाले भविष्य का, और जो परमात्मा ने जिन जिन युगों में लीला की वो सारा दिखा था, वो वाणी दास आपको सुनाने जा रहा है। और परमेश्वर ने कबीर सागर में धर्मदास जी ने लिखा है, और कबीर वाणी चैप्टर है उसके 136-137 पर बताया है 112 पंथों का वर्णन करते हुए कि 12वां पंथ जो गरीबदास का होगा, जो गरीबदास पंथ चलाएगा उस पंथ के प्रवर्तक द्वारा यानी गरीबदास द्वारा मेरी महिमा की यथार्थ वाणी पुनः प्रगट होगी, और उस वाणी को कोई समझ नहीं सकेगा, ना गरीबदास ही ना कबीरपंथी, उसको समझाने के लिए भी मैं चलकर जाऊंगा उसी गरीबदास के पंथ में। परमात्मा ने आए तो अपना कुत्ता भेज दिया पुण्यात्मा आपको भौंक भौंक कर जगाने के लिए। दर्जिंदे का रूप सैल वृंदावन कीनी, तहां मिले धर्मदास करत है बहुत अधीनी। यानी साधु संत भक्तों में एक विशेषता होती है, वो नरम बहुत होते हैं, व्यसक ज्ञान का कहीं उनके समझ में नहीं आता है, वो भले ही थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन भी करते हैं, चाहे थोड़े बहुत गर्म भी हो जाते हैं, पर नरमी फिर भी रहती है उनमें, एक गुण होता है। तो क्या बताते हैं परमात्मा, दर्जन गरीबदास जी बता रहे हैं, दर्जंदा का रूप सैल वृंदावन कीनी, परमात्मा जिंदा रूप बनाकर और वृंदावन में सैर सपटे को गए, तहां मिले धर्मदास करत हैं बहुत अधीनी, बहुरंगी बरियामना कामनी कामी सोई, दर्शत गुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। ओए होए, सतगुरु यानी सच्चा ज्ञान देने वाला पृथ्वी पर परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं होता। और कहते हैं धर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई, के हे जग वालो, हे जनता, परमात्मा स्वयं सतगुरु रूप धारण करके वो धनी कुल मालिक आप ही कबीर रूप, वो कबीर जी धारणक रूप में वह जिंदा महात्मा के रूप में प्रगट हुए। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई, परम उजागर ज्ञान ध्यान बहुरंगी बाना, तहां मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। कौन तुम्हारी जात कहां से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहब नी कामी। ओए परमात्मा उस एक जीव को धर्मदास जी को तो कहते हैं स्वामी जी आपकी कौन जाति है और कहां से आए हो, और कहते हैं कौन तुम्हारी जात कहां से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहिबनी कामी। गिरिदास जी कहते हैं पुरुष कबीर परमात्मा कबीर उसको स्वामी कहकर के पूछ रहे हैं निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, यानी उसके परमार्थार्थ उसके उसके जीव उद्धार के लिए निकट पहुंचने के लिए उस जीव को स्वामी कह रहे हैं भगवान। अब धर्मदास जी क्या कहते हैं, हम वैष्णो बैरागी धर्म में सदा रहाई, कोई सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मनमाही। कि हम वैष्णव परंपरा से संबंधित हैं, वैष्णव धर्म में रहते हैं, हम किसी छोटी जाति वाले को निकट भी नहीं आने देते, हम इतने सुच्चे हैं, ये कहना चाहते। सुन जंदा मम ज्ञाने को अधिक अचार विचारे, हमरी करनी जो करे वो उतरे बहु जल पार। अब जो भी संत, किसी भी संत से भगत दीक्षित है, उस गुरुजी के द्वारा दिए हुए ज्ञान को फाइनल मान रहा है, और कोई उससे मार्ग पूछता भक्ति का, तो वो कहता है कि आज हमारे गुरुजी जो भक्ति देते हो पार हो जाओगे। तो यही धर्मदास जी ने रटला रखी थी कि हम जो करनी कर रहे हैं ऐसी तुम भी करोगे, यानी गुरु बनाकर भक्ति करोगे, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। फिर परमात्मा क्या पूछते हैं, बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़भागी। के हे पुण्यात्मा, आपका क्या नाम है, आप कहां से आए हो, आपका गाम कौन है, कौन कौम कुल जात कहां को गमन किया है, कौन तुम्हारी रेस किन्हें तुम नाम दिया है, कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई, और कौन पुरुष की सेव कहां समाधि लगाई, को आसन को गुफा के भरमत रहो सदाई, सालग सेवन की इन बहुत अतिभार उठाई, झोली झंडा धूप दीप अधिक आचारी, झोली झंडा धूप दीप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर भेद कई हो ब्रह्मचारी, हम को पार लंघाई यो परम उजागर रूप, जंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। अब परमात्मा की महिमा को गरीबदास जी बता रहे हैं, उनकी क्या क्या वार्ता हुई आपस में। तो पहले उनकी कितनी प्रशंसा की कि आप तो ऐसे लगते हो जैसे मुक्त हो चुके हो, और मेरा बेड़ा पार करो, मैं बहुत दुखी हूं। अगर ऐसा ना परमात्मा उससे कोई कहते तो वो बात भी ना सुनता, हम इतने नालायक हो लिए। अब क्या बताते हैं, परमात्मा ने पूछा कि कौन, बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़भागी, और कौन कौम कुल जात कहां से को गमन किया है, और कौन तुम्हारी रहस्य किन्हें तुम नाम दिया है, कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई, यानी किस मंत्र का तुम जाप करते हो, तुम्हारा ज्ञान क्या है, और कौन पुरुष यानी किस भगवान की तू पूजा करता है, और कहां समाधि लगाई, कहां की आशा लगाए बैठे हो, कहां जाओगे। फिर कहते हैं को आसन को गुफा के भरमत रहो सदाई, कि कोई गुफा में रहते हो, या कोई आपका ठोर ठिकाना कोई आश्रम है, या ऐसे ही चलते फिरते रहते हो, और सालग सेवन कीन बहुत अतिभार उठाई, आपने घने ये मूर्ति मारती ठा रखी, साथ में टली घंटी घुंटी बजान की ले रहे थे, ये घना सामान ले रहे हो, आप तो करड़े भगत हो दृढ़, और झोली झंडा धूप दीप तुम अधिक विचारी अधिक आचारी, और बोले धनी कबीर भेद कही हो ब्रह्मचारी, और हमको पार लंघाइयो। परमात्मा कह रहे मेरा बेड़ा पार करो, परम उजागर रूप, और जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। भगवान कह रहे हैं आपका तो ऐसा लगता है जैसे मोक्ष होया पड़ा है, और मेरी भी मेरे पर भी दया करो, कोई ज्ञान ध्यान बताओ। अब ये बात की तभी वो आगे बात बढ़ी, ना तो सुने भी नहीं उधर से मुसलमान रूप, और फिर अपनी अपनी भक्ति पर काल न सभी दृढ़ करे रखे। अब क्या बताते हैं धर्मदास जी, बांधो गढ़ है गाम नाम धर्मदास कही जे, वैसे कुल कुली जात सुधर की निवात सुनी जे, सरगुण ज्ञान स्वरूप ध्यान सालग की सेवा, मल्ला गिर छड़कंत संत सब पूजे देवा, 68 तीर्थ नान ध्यान कर कर हम आए, और पूजे सालग राम तिलक गलमाल चढ़ाए, धूप दीप अधिकार आरती करें हमेशा, राम कृष्ण का जाप जप हम रटे शंकर सेसा, नेम धर्म से देहसने दुनिया से नाही, आरुडम बैराग और की मानू नाही। फाइनल कर दिया धर्मदास ने कि मैंने जो ज्ञान ग्रहण हो चुका है मैं कति दृढ़ हूं, आरूढ़ हूं इसके ऊपर, मेरे साथ मैं किसी की मानू नहीं कि मेरी भक्ति में कोई मीन मेघ कोई दोष निकाल लेगा। तो नेम धर्म से नेहसने दुनिया से नाही, और आरूढ़ वैराग और की मानू नाही। सुन जंदे मम धर्म को वैष्णो रूप हमारे, धर्मदास जी कह रहे एक जंदा सुन ले, अड़सठ तीर्थ हम किए हम नचीना सिर जनहार। परमात्मा ने कहा कि ये बताओ ये तीर्थ कैसे बनते हैं, तीर्थ वस्तु क्या है। धर्मदास तीर्थ वो स्थान है जहां किसी महापुरुष ने कोई साधना भक्ति करी है, और जैसे एक जो भी तीर्थ जैसे बना है, कोई शुक्ल तीर्थ है, कोई फलाना तीर्थ है, कोई ब्रह्म तीर्थ है, इनके बड़े इतिहास हैं। और दास ने आध्यात्मिक ज्ञान गंगा नामक एक पुस्तक है उसमें बहुत निर्णायक तरीके से लिखा, उसमें आप पढ़ सकते हैं, उन प्रमाण दे रखे हैं कि एक तीर्थ कैसे बने हैं कि एक न 90,000 वर्ष की कोई ब्राह्मणी किसी गुफा में रह रही थी, वहां पर एक 10,000 वर्ष की उम्र का जवान ब्राह्मण उस गुफा में चला गया घूमता फिरता। अब पहले लाखों वर्ष की आयु थी सतयुग में, लाख वर्ष की, लाख से भी ज्यादा हो जाते थे, जैसे आजकल पहले 100 मानते थे, 100 से भी ज्यादा 150 तक भी जीवित रह जाते थे। तो जब वो 10,000 वर्ष की उम्र का लड़का, वो लड़का मानने जवान ने था, जब वह पहुंचा तो उसने कहा औरत ने कि मैं आपके इंतजार में थी, आप मेरे पति, और मेरी मां ने कहा था कि तेरा पति यहीं आएगा, तू यहां बैठी रहना, आज मेरी तमन्ना पूरी होगी। यानी उन्होंने ब्याह कर लिया, ब्याह तो कर लिया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी साधना करें कि अब बुढ़िया जवान हो जा, तो उन्होंने एक स्थान गंगा के किनारे जाकर दोनों ने तपस्या करी। कोई देव प्रसन्न हुआ, उसने क्या मांगा कि अब जवान हो जा, अब बुढ़िया जवान होगी, और फिर उन्होंने जवान हो गए तो फिर क्या करया होगा तो अपने बेरा में बताऊं नहीं। अब उस स्थान पर वृद्ध तीर्थ माना जाता है, माथा टेकने जाएगा तो मोक्ष होगा। बता ये तीर्थ है, ऐसे बड़े तीर्थ सारे। दूसरी बात है कि जैसे किसी महापुरुष ने कहीं बैठकर कोई भक्ति अपनी की है, जो भी उसने जो साधना की है उसके आधार से उसने जो लोक प्राप्त होना था वो हो गया, उसने उस स्थान पर बैठकर भक्ति करी है, कोई साधना अनुष्ठान किया है, तो वो कर कराकर अपना समेट के ले गया, वो तो जो भक्ति उसने की। अब ये यादगार है पुराणों में जो लिखा है कि उसने वहां ऐसा किया, ये देखने जाओ तो अलग बात है, प्रमाणित करने के लिए सचमुच है कि नहीं, वो तो सेकंड थिंग, वो तो भक्ति नहीं है। आपका विश्वास ना गया हो लिखे हुए पर तो वहां देख के पक्का विश्वास हो जाएगा इसमें जो लिखा सही है, यादगार भी याद, इतनी सी बात इन तीर्थों की। अब वो व्यक्ति वहां करके चला गया, जैसे एक अमाम दस्ता होता है ना, जड़ी बूटी कूटने का लोह का उखड़ सा, और इतना डंडा हो उसका मुसड़ सा लोहे का ही, तो उसमें जड़ी बूटी सामग्री कूटा करें हो ना उनकी भी कूट लेते हैं। इन तीर्थों को तो ऐसा जानो ये तो अमाम दस्ते हैं, और किसी ने किसी का अमाम दस्ता मांग के उधारा और अपनी अवन की सामग्री कुट्टी उसमें कोई, और वो साफ सूफ करके धो धाकर अगले का देते, जब साफा करके देते वो सारी सामग्री तो निकाल ली, वो धोकर दोनों उखल मुसल दे दिए। अब उसमें फिर भी महक आ रही थी थोड़ी थोड़ी, उन्होंने देखा कि इसमें महक कैसे आ रही है, उन्होंने देखा कि इसमें कोई सामग्री कुट्टी होगी, आज भी महक आ रही है, एक दो दिन पाचवा खत्म होगी। तो जिस स्थान पर कोई साधक साधना करता है वो अपनी सारी भक्ति लेकर चला जाता, जैसे उसने सामग्री कूटने वाले ने कति झाड़ पूछकर एक एक दाना निकाल लिया था, और फिर भी वहां जाने से उसका थोड़ा सा वातावरण में फर्क पड़ जाता है। वहां जाने से एक बार नो देखता है, महसूस होता है कि वह बड़ा शांत स्थान है, लेकिन कुछ वर्षों के बाद वो भी शांति खत्म हो जाती है वहां से। तो वहां तो जैसे उसने सामग्री कुटी है, आपने भी किसी स्थान पर किसी भी अमदस्ते में जहां आप कुटोगे वो अमदस्ता हो जाएगा आपका। जिस स्थान पर बैठकर आप साधना करोगे आपका काम बनेगा उस भक्ति ते, ना कि किसी और ने जो साधना की उसके दर्शन करने ते या माथा टेकने ते आपको कोई लाभ नहीं। इतनी सी बात है। अब दूसरा उदाहरण दें कि जैसे दास पहले नगर नगर में सत्संग कराया करते थे चार चार पांच पांच दिन के, तो वहां भंडारे भी होते थे, हलवा प्रसाद भी बनता था, भोग लगा खीर भी बनती थी, जैसे यहां चल रहा है तो वहां अस्थाई भट्टियां बनाते थे हम। अब हम सत्संग करके आ जाते थे और कोई ये कहे कि यहां ये पोस्टर कैसे लगे हैं कि संत रामपाल का सत्संग हुआ था, चल देख आज दिखा के लाते हैं तेरे को, यहां हुआ था, इस ग्राउंड में हुआ था और यहां खीर बनाई थी, यहां हलवा बना हुआ थे, मैं भी आया था एक दिन। अब दूसरे बार बार फिर कोई वहां देखने जा तो देखा हो कि वास्तव में सत्संग हुआ था, यहां खीर खैर बनाई थी, हलवे भी बने थे, लेकिन ना वहां खीर ना हलवे भट्टी भट्टी है, वह खीर हलवार वो मंत्र मोक्ष के तो वहां मिलेंगे जहां रामपाल सत्संग कर रहा होगा। ये सतलोक आश्रम बरवाला में वो सारे साधन सारी वस्तु उन भट्टियों को देखने से कोई लाभ नहीं होगा। तो जितने भी ये तीर्थ हैं ये ऐसी भट्टी हैं, जिसने जो काम करना था वो करके चला गया, अब वहां जाने का कोई यूज नहीं है। बालक नहीं हो, बुद्धिमान हो, इंटरनेट तक बना लिए, ऐसे बढ़िया 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 सेट सिस्टम बना लिए, कंप्यूटर बच्चे चला लेते हैं, घुमा देते हैं एक मिनट में, तो इधर भी थोड़ी सी डाइवर्सन करो दिमाग की। ये बहुत अनमोल वस्तु है और ये तो पेटे का झगड़ा है, जो सारा दिन पढ़ते हैं तो 15-16 साल बच्चे पढ़ते हैं, दो रोटी मिल रहा तो मिल रहा, ना भी मिले वो भी किस्मत वाले को मिलती है, तो इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, रोटी भी मिलेंगी, मोक्ष भी मिलेगा, सुख भी होगा। अब क्या प्रसन्न किया परमात्मा ने, बोले जिंदा बैन कहां से सालग आए, को 68 का धाम मुझे तत्काल बतावे, राम कृष्ण कहां रहे नगर वो कौन कहावे, और ये जड़वंत हैं देवता सकों क्यों घंट बजावे। देख कितना निर्णय ज्ञान है। धर्मदास जी सालग राम की मूर्ति का आगे घंटी बजाओ था बैठे बैठे, नो मूर्ति पत्थर की या पीतल की ले रहा था, तो परमात्मा ये समझाना चाह रहे थे कि राम कृष्ण कहां है कि जो स्वर्ग में है, और राम कृष्ण मिलेंगे तभी तुम्हें लाभ होगा, कहां जी उनकी प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, तो फिर ये पत्थर की मूर्ति कह देंगे आपको। जैसे दास ने पहले भी सत्संग में बताया कई बार, ये दास एक बार सेब खरीदा था एक सेब विक्रेता थे, और उस ये क्या करते हैं कि जिसके पास घना स्टॉक और बढ़िया सेब दिखा आदमी वहां आकर्षित होता है, उसने जहां उसने एक बना रखी थी रैक सी, उसमें नीचे तो ओरिजिनल सेब थी, ऊपर 2-3 उनमें रैक में पत्थर की इतनी गजब की सेब, उससे भी ओरिजिनल से भी सुंदर मूर्ति बनवाकर नौ की नौ आकार 10-12 रख रखी। तो शाम के समय उसकी जो सेब शाप थी सब छांट छांट कर ले जा, जितनी बची हुई में थे छांटे सब उनमें जो बच जा बढ़िया पा जा। तो दास ने भी कुछ सेब खरीदनी थी, वो सेब अच्छी थी नहीं, मैं कहने लगा भाई ये दे दे ऊपर वाली तार गए, बोला ये नहीं देनी। मैंने सोचा भाई तू पैसे 2 रुपये फालतू ले ले, बढ़िया माल तो दे दे, ये देनी नहीं ना। मैंने सोचा भाई क्यों नहीं देता, उसने उठा के बाद मेरे उतार के मेरे तीन दे दी गिल्ले पकड़े, और मेरे हाथ में इतना भारा पत्थर वो और तरह के जो भाई, और दिखे उस ओरिजिनल सेब से भी सुंदर कलर इतना शानदार बना रखी हुआ पत्थर की। तो कहने का भाव दास का ये है कि उस पत्थर की मूर्ति तो सेब के गुण बताती है कैसी सेब है, अब उस मूर्ति की ने घर में लिया हुआ और उसने धर ले और सेब का गुण नहीं दे सकती, वह सेब में लेनी पड़ेगी कहीं मिलोचे। तो परमात्मा बताना चाह रहे हैं कि जो तू ये घंटी बजा पीतल के इन घंटी मूर्ति आग गए, या श्री कृष्ण नहीं है मूर्ति है उसकी, और श्री कृष्ण तो बात बने वो बताओ तू स्वर्ग में मेरी यहां टिंडे लेना है तुम्हें मथुरा में अकल मारी जा रही तुम्हारी। तो पुणात्माओं दास इन अमर वाणियों को अभी इसलिए सुना रहा था क्योंकि आपके हृदय में पहले ये जच है कि कबीर इज गॉड। तो 20 साल के प्रयत्न के बाद आज आप यानी जो यहां आने वाले अधिकतर ये स्वीकार कर चुके हैं कि कबीर इज गॉड। तो ईब आपका एक एक बात समझ में आओगी और फिर आप दृढ़ भक्त बनोगे और दृढ़ भक्त बिना भक्त भक्ति बन नहीं सकती क्योंकि कोई ना कोई डगमग कर देता है यही हम फेल होते रहे। राम कृष्ण कहां रहे कौन वो नगर कहावे और ये जड़वंत है देवता से क्यों घंट बजावे। ये तो जड़ है जड़ इनका के को पत्थर पीटे घंटी पीटे है वो तो जो स्वर्ग में बताओ आप वहां रहते हैं। राम कृष्ण सुने गुने नहीं बात ये पत्थर धात पत्थर के स्वामी और कहां भर में धर्मदास चीन निज पद निज धामी निकामी। यानी इसमें कहां भटक रहे हो आप वास्तविक ज्ञान ग्रहण करो उससे बात नहीं। राम कृष्ण कोटो गए वो धनी एक का एक जिंद कह धर्मदास से बूझो ज्ञान विवेक। ये रामकृष्ण ने करोड़ों मर लिए तेरे अरो मालिक जो का तू है तो कुछ विवेक से ज्ञान को ग्रहण करो लकीर के फकीर मत बनो। बूझो ज्ञान विवेक एक निज निश्चय आनम दूजा दोजक जात कहा पूजो पासानम। जठरग्नि से राख साख सुनियो धर्मदासा और तज पत्थर पाषाण छोड़ या बोधि आशा या बोधि यानी जो आशा तो लगा रहा है या कमजोर आशा है इसे मोक्ष नहीं होगा ना ये भगवान है। कहते जठरग्नि में राख साख सुनो धर्मदासा कि जिसने मां के पेट में भी तेरी रक्षा करी जठराग्नि जहां जले थी जहां पर बच्चा पलता है बनता है मां के गर्भ में उसके साथ में ही मालिक ने कैसी इंडस्ट्री ला रखी है पेट में। हम खाना खाते हैं हम तो 10 मिनट में इसमें डालकर निश्चिंत हो जाते हैं ये करें वो करें उसके बाद तो अंदर फैक्ट्री चालू होती है। हम कच्चा पक्का बनाते हैं क्योंकि रोटी कभी घड़ी फूक दें तो वह काम नहीं करे और फिर उसके बाद पुनः उनको फूका जाता पेट में। इनको फूकने के लिए आप सिंपल सी रोटी सब्जी बनाने के लिए कुकर नारा लाओ ये बना रखे कुकर सीटी मारे आग नरी जलाओ जब जाके सब्जी थोड़ी सी नर्व होती है और फिर अंदर फिर परमात्मा उसको वो परमात्मा की फैक्ट्री जो अंदर जठराग्नि जिसको कहते हैं वह फिर से इसको कत्ती फूक और इसमें से न्यारे न्यारे अंश बना के और मल अलग करके पेशाब अलग करके और अलग से डिश करती है और वहां इतनी गर्मी होती है जब इसको पुनः जलाया जाएगा तो वहां कितनी हीट होगी और उस करना उस हीट करना कि शरीर पे इफेक्ट ना उस छोटे से मासूम बच्चे के शरीर पे आंत नहीं आने देता जाता। तो कहते जिसने तेरी रक्षा वहां करी वो है समर्थ वो है पूर्ण परमात्मा और सारे ब्रह्मांडों को रच के जिसने रचा है उसका ध्यान दो। जिसमें गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि तू तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है जो सबका सृजनहार है कहते उसको उसकी पूजा कर और ये अपने मनमुखी साधनाएं त्याग दे। जठरग्नि में राख साख सुनो धर्मदासा और तज पत्थर पाषाण छोड़िया वो दी आशा। अनंत कोट ब्रह्मांड रचे और सब तज रहे नियारे जिंद कहे धर्मदास से जाका करो विचारे। सारे ब्रह्मांडों को रच के अरुण से अलग उनके ऊपर ही रहता है। अब जैसे वैज्ञानिक ने वायुयान बना दिया और उसके अंदर बैठ गया ठाट से वो चालू कर दिया चल भाई। अब वैज्ञानिक उस जहाज ने सिर पर निठा रहा उसके अंदर बैठा और बैठा अपना भोजन कर रहा उसके अंदर यह सारे सिस्टम हो रहे। तो इसी प्रकार परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों को बनाकर छोड़ दिया उसमें चाबी भर दी वचन से अरविंद पर घूम रहे ठाट से, उनको उनको क्या सिरदर्द है। तो विज्ञान, इस नकली विज्ञान में अंतर हो सकता है, कोई डिफेक्ट आ सकता है, उस मालिक के विज्ञान में कोई अंतर नहीं आ सकता, जो उसने बोल दिया सो फाइनल होता है। अनंत कोट ब्रह्मांड रच सब तज रह नियारे, जिंद कहे धर्मदास से जाका करो विचार। जाका करो विचार सकल जिन सृष्टि रचाई, वार पार नहीं कोई बोलत है सब गटमाही। बोलत है धर्मदास सुनो जिंदा मम बाणी, और कौन तुम्हारी जात कहां से आए प्राणी। ओए होए, भगवान तो उसको स्वामी करे और धर्मदास जी भगवान को कहते ए जीव ए प्राणी तू कहां से आ, तेरी क्या जाती है, तू बोल रहे बहुत गणा। बोलत है धर्मदास सुनो जिंदे मम बाणी, कौन तुम्हारी जात कहां से आए प्राणी। सरगुण सेवा सारे है निर्गुण से नहीं ने, सुन जिंदे जगदीश तू हमें शिक्षा क्या दे। कहते मैं तो सरगुण पूजा करता हूं मूर्तियां की, मैंने निर्गुण से कोई लेना देना नहीं, और तू मुझे क्या दीक्षा देता है जिंदा, मैं सब ज्ञान से परिपूर्ण हूं। बोले जिंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा, हम खालक हम से खलक ये सकल हमरा प्रकाशा। अब देखो परमात्मा ने कहा कि बोले जिंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा, सुन मेरे वचन, हम खालक, खालक माने सारी सृष्टि का रचने वाला, और हमसे ये खलक या सारी सृष्टि मेरे से ही बनी है, और ये सकल हमरा प्रकाशा। हम रचे सब पाषाण नदी ये सब खेल हमारा, अचरा चर चौखानी बनी विधि अठार बारह। हमसे ब्रह्मा विष्णु ईश है कला हमारी, हम ही पद परवान कल्प कोट युग तारी। हम साहेब सतपुरुष हैं ये सब रचना हमारे, जिंद कहे धर्मदास से हम पूर्ण करतार। अब या धर्मदास के गले नहीं उतरे कि क्यों सारी झूठ बोल रहे हो, एक मुसलमान मान रहा था, एक जिंदा महात्मा बैठे एक प्राणी समझ रहा था। अब परमात्मा क्या कहते हैं, हम साहेब सतपुरुष हैं ये सब रचना हमारे, जिंद कहे धर्मदास से हम पूर्ण करतार। अले फिर भी दग क्या एकदम, अरे क्या बात कर रहे हो, आपने शर्म नहीं आती, एक दो कोटी के जीव और अपने आप को भगवान कहते हो, परमात्मा फिर अंतर जानोगे। यानी ऐसे ऐसे पांच छह बार परमात्मा ने उसको झटका दिया, जबकि तब उसकी बुद्धि ठिकाने आई, हम इतने उल्टे ज्ञान में रंग दिए काल। अब परमात्मा बता रहे हैं, बोलत है धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, और दिक्कत पिंड और प्राण कहो तुम अलख अभेवा। नाद बिंद की दे शरीर है प्राण तुम्हारे, तुम बोलो बड़ बात न आवे दिल हमारे। खान पान अस्थान देहे मैं बोलत दीसम, और कैसे अलग स्वरूप भेद कही है जगदीसम। कैसे चंद और सूरज और कैसे नदी गिरपासाना, और कैसे पानी पवन धरणी पृथ्वी असमाना। कैसे सृष्टि संजोग विजोग करी किस भांति, कौन कला करतार कौन विद अवगत नाती। अब धर्मदास जी पूछ रहे हैं कि आप अपने आप को भगवान कह रहे हो, जब दोबारा मालिक फिर मिले फिर ठीक बोला थोड़ा सा कि नो बताओ, आप खाते हो पीते हो सामने बैठे मुझे दिखते हो, भगवान तो निराकार है, आप पुण्यात्मा हमारी सारे सबकी बुद्धि कति फेल हो रही थी। दास विष्णु जी का पुजारी था, विष्णु जी की मूर्ति का रोज माथा टेक क्या करता, सामने मूर्ति रखते थे कागज पत्थर की जैसी भी थी, और फिर भी कभी चर्चा चलती थी कि भगवान कैसा है, को तो निराकार है दिखाई नहीं देता प्रकाश दिखता है। तो वह बुद्धि धर्मदास की सेट हो रही थी, कहने लगे कि तुम भगवान कहो और मेरे सामने बैठे हो खाते पीते दिखते हो और सारा कुछ आपके शरीर भी दिखाई देता है परमात्मा, तुम कैसी परमात्मा हो? परमात्मा बोले कि देख निरख प्रकृति देख हमारी पंच भौतिक नहीं काया, मेरा शरीर तेरे जैसा नहीं है, मैं विधेय हूं। विधेय का मतलब है कि तुमसे भिन्न देही है मेरी। विधेय का अर्थ होता बिना देही का नहीं, विधेय जैसे विज्ञान है यानी विशेष ज्ञान को विज्ञान कहा, तो विधेय का अर्थ है तुमसे भिन्न विशेष देही है मेरी, आप जैसे पांच तत्वों की नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में यह स्पष्ट किया है कि सप्रियागात शुक्रम अकायम असनाविरम अपाप बिंदम कबीर बनीसी स्वयं भू परिभू व्यवधाता। सारे ब्रह्मंडों का रचने वाला सबसे पहला देहधारी प्रियागात सप्रियागात वो सबसे पहला देहधारी है, लेकिन उसकी जो शरीर है उस परमात्मा का शुक्रम अकायम असनाविरम। अभी ननाडिया ने जो वेद के ज्ञानियों ने अकायम शब्द पकड़ लिया, अकायम माने बिना काया का, उसमें शुक्रम अकायम असनाविरम लिखा है। शुक्रम माने मात पिता के बीज से, शुक्र कहते हैं उसको, और उससे ना उससे बनी हुई काया नहीं है और असनाविरम है उसमें नाड़ी तंत्र नहीं है। तो अकायम भगवान निराकार होता तो अकायम में लिख देते शुक्रम और बिना स्नायु का क्यों लिखा उसमें, स्नायु माने स्नायु नाड़ी, तो उसमें लिखा है कि सप्रियागात वो सबसे पहला देहधारी है, लेकिन उसकी जो शरीर है शुक्रम अकायम असनाविरम अपाप बिंदम, उसका परमात्मा का जो निर्विकार शरीर है उसमें कोई दोष नहीं है, उसकी नाड़ी तंत्र से माता के पिता के से उस बीज से बना हुआ वो नहीं है, शुक्र से बना हुआ नहीं है वो है, और वो स्वयंभू है, वो कबीर मनीषी, वो सबसे वो सतगुरु मनीषी विद्वान वो कबीर देव है, कबीर साहब है उसका नाम। तो यहां परमात्मा वही बता रहे हैं कि नरक पर कर देख नहीं पंच भौतिक हम रह काया, हमारा शरीर तुम्हारे जैसा नहीं है। बोलत जिंद अबंध सकल गट साहेब सोई निर्वाणी निज रूप सकल से न्यारा होई, हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा हम बंध सेतु संग से डे पदम अठारा, हम ही रावण मारा लंक पर करी चढ़ाही हम ही दस सिर मारे देवताओं की बंध छुटाई। अब जैसे पुण्यात्मा दास ने भी आपको प्रमाणित किया था कि जो भी इस पद पर विराजमान हैं जो अच्छी आत्मा जैसे राम जी थे श्री राम थे, तो ये भी भगवान के वो बच्चे थे। कुछ दिनों में जो पुराने भक्त उनका तो सारी बात और दास संकेत करता हूं समझ में आओगे कि अब ये समय है जिसमें कंप्लीट कोर्स ऑफ वर्शिप मिलेगा आपको, और ये इतने गजब के मंत्र हैं, थोड़े मंत्रों से आपने ढेर सारा पुण्य मिलेगा। जैसे गरीबदास साहिब जी ने कहा कि सतनाम पालड़े, दो अक्षर का सतनाम है वो, रंग होरी हो और 14 लोक से ढावे राम रंग होरी हो, और तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, एक श्वास उस श्वास से जो कीमत सांस के मंत्र की, एक मंत्र की सतनाम की कितनी कीमत बता दी है कि उस एक बार के सेवन पूरे संत लेकर अपने आप नहीं कितने सुने सुना कर बांटे जाओ, से कोई लाभ नहीं होगा, हर एक चीज मर्यादा काम करती है। इस दास से वो मंत्र लेकर और फिर मर्यादा में रहते हुए एक सांस का सिमरण आपका कितनी कीमत देगा आपको। हम एक छोटा सा सरपंच बन जाए उस समय ने सोचा घना काम बन गया, कोई चेयरमैन बन जाए उसमें ने सोचा बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी, कोई एमएलए बन जाए ने सोचा काख पीटा पता नहीं के पा लिया, और मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री एक टुकड़े का बन जाता है तो घनी ऊंची अपनी महिमा मान लेता है। परमात्मा कहते हैं कबीर सब जग निर्धना धनवंता न कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। राम नाम का धन कौन सा होगा? राम नाम जप कर ठर होई ओम सोहम मंत्र दोई। ये क्लियर भी कर दिया गरीबदास जी ने कि राम नाम ये है, इसको जप कर सथाई स्थान प्राप्त करो, और ये है वो सतनाम दो अक्षर का, बार बार नहीं बताऊंगा। तो यहां बताया कि सतनाम पालड़े रंग होरी हो, एक तखड़ी के एक पालड़े में एक सांस के नाम की कीमत दर्ज हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, तीन लोक पास्यंग धर रघुरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रघुरी हो। कि अगर तुम यहां खुशी मनाना चाहते हो तो इस राम नाम की भक्ति कर ले, राम के रंग में रंगने के बाद फिर यहां का सुख भी तुम्हें तभी प्राप्त होगा। न नकली होली करते हो, लाल पीले कपड़े कर लेते हो, इससे कोई लाभ नहीं होगा। कल किसी का उकसुक हो जाती है, कोई डेथ हो जाती है, मना के दिखाओ होली। एक भगत कह रहा था, हमने 11 साल हो गए कोई त्योहार नहीं मना लिया, हमारे परिवार में कोई ऐसी मृत्यु हो जाती है, कोई रिश्तेदारी में हो जाती है, हमने त्योहार मना के नहीं देख लिया। तो परमात्मा कहते हैं ये होली राम रंग की होली ग्रहण करो तुम, इसमें फिर होली भी या असली होली तय। तो कहते हैं इस सतनाम का एक मंत्र की इतनी कीमत है जैसे इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, और हमारे घर पर ये सेठ लोग बिजनेस व्यापारी गेहूं बाजरा ज्वार सौदा लेने आते थे। तो हमारे पिताजी पहले कहते थे भाई लाला जी आपकी तखड़ी दिखा, इसके में इसमें गड़बड़ ना होनी चाहिए, उधर पर दिखाता था लो जी, और थोड़ी बहुत त्रुटि होती थी तो उसी कणक से जैसे गेहूं तोलना हो थोड़े से 4-10-20 गेहूं उठाए दाने और एक साइड में डाल दिए, वो एररलेस होगी, उसमें त्रुटि नहीं रही, वो पासिंग कह रखी मानी जाती, वो पासिंग था उसमें पड़ी रहे थी, वो सौदे में नहीं आती थी, और उसी तरफ बट्टे रख देते थे फिर, और दूसरे पलटे से फिर भर भर कर तोल के 10-20-50-100 मण गेहूं तो ले जाते थे। तो सौदा तो वो गेहूं का वो था, 100 मण 50 मण जो लिया उन्हें, और वह पांच सिंह 4 दाने पड़े थे वो एक साइड में, वो सौदे में नहीं आते। तो कहते हैं सत नाम एक पालडे में रंगोरी हो और दूसरे में 14 लोक से डावे, जिसमें विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, दुर्गा जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, धर्मराज का लोक और ब्रह्म लोक, और फिर ये ऊपर के गो लोक और फलाने लोक सारे मिला दे। ये तो एक पालडे में दर्दे, इनकी कीमत खाक नहीं है उसके सामने। और तीन लोक पासिंग धरे, पृथ्वी का पूरी पृथ्वी, स्वर्ग लोक और पाताल लोक पासिंग धरे, तो ना तुले तुला राम रंगोरी। आपने पता नहीं, दास ने पता कि सचमुच सच्ची बात है, दास जोर ही स्मारक का, और आपको जोर ही बनाने के लिए प्रमाण दास कर रहा कि आप भी जोर ही बन गए, बनोगे और बन भी गए, भगत तो ज्यादा ज्ञान सुन चुके। तो क्या कहा है कि तीन, तो कहने का भाव तो दास आपको बता रहा था कि इसमें एक वाणी को किए है सूक्ष्म वेद सवसम वेद यानी तत्व ज्ञान, इसमें एक एक वाणी में घड़े गुड रहे थे, इसलिए तो समझ में नहीं आई किसी के, आज तक पटक शटपटक का मर गए, पता नहीं क्या कह रखा है, यहाँ कह रहे हमने पुड़बान दिया, हमने रावण मारा, राम का भी उतना था उसको कुछ करने का। परमात्मा ने वो पत्थर भी परमात्मा ने हल्के किए थे, कबीर साहब ने जो मुनिंद्र रूप मारे थे त्रेता युग में, एक पहाड़ को हल्का किया था, कभी सुनाएंगे आपको कथाएं जब परमात्मा के प्रगट द्वेष पर विशेष लीला ही सुनाएगा दास आपको अगले समागम जो आने वाला है। तो कहने का भाव है कि उसमें वो भी परमात्मा ने दया करी थी, क्योंकि ये राम कृष्ण भी उसी के बच्चे हैं, और ये घने भक्ति धन के संग्रहित था, घने भक्ति धन थे, और वो भक्ति इस समय प्राप्त करी थी उन्होंने किसी युग में, किसी कलयुग की इस पिछली पीढ़ी में, और जो पार नहीं होंगे वो काल के फंस जाएंगे। और ये इतनी कमाई आप तो रोज आनंदना जन कितने सांस का सिमरण करते हो, और एक सिमरण की इतनी कीमत, और सारे जीवन में पता नहीं कितनी कमाई कर लोगे, और यदि आप पार नहीं हुए फिर फंस गए काल के, स्वर्ग में राजा बना, स्वर्ग का देवता बना देगा, मां स्वर्ग में ले जाएगा, सबको अलग अलग जो भक्ति करे और सबकी नारी नारी स्थानों पर आपको भिन्न भिन्न स्थानों पर इसका बेनिफिट देगा, और साथ में इसका अपना एक कमीशन है वो लेता है, और पूंजी आपकी खत्म होगी। अरे रामकृष्ण नर की फिर भी गणिया बच जाती है, ऐसे जो पुण्यात्मा बनते हैं तो उन्हीं में से ये फिर सिलेक्ट करता है अपने पुत्र रूप में पैदा करता है उन आत्माओं को, उनकी पूंजी तो वह अपनी ओर से अरयुग उसके उनको दुरुपयोग करके उनको पाप का भागी और बनवाता है। और जहां जब वो राम कृष्ण रूप में जब विष्णु जी आए, विष्णु जी भी तो उसी के बच्चे हैं, तो विष्णु बने किसी, वो भी कभी इस कलयुग में मालिक की पूजा कर रहे हैं, तो उनको जब दुख होता है तो वो भी साथ वही देता जाके। जब रावण नहीं मर रहा था, पसीने आ गए थे उसके रामचंद्र जी के, जब परमात्मा ने जाकर गुप्त रूप से जब उसकी नाभि में ठोका था तीर, वो तो सामने बराबर का योद्धा था राम के, तो छक्के छुड़ा रखे थे उसने, रावण ने, तो कहने का भाव ये है, कहते धनी का जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा, जो कर रहा था उसका पता भी कोई नहीं क्या। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि हमने ही कराया था सारा काम, तुम रामकृष्ण को तो सिर्फ एक महिमा दी थी कि इनके पुजारी हैं, भक्ति की आस्था बनी रहेंगे। इस कलयुग तक भक्ति की आस्था बनाए रखने के लिए आपके हृदय में मालिक ने स्वयं आगे ना आकर के, चाहे को किसी की पूजा करे उसी के माध्यम से जाकर उसका फल दे आए। और काल ये चाहता है कि भक्तिहीन हो जा, इसी भक्ति कराऊं करते नकली, और ये भगवान से आस्था उठ जाए, जैसे सारा चीन नास्तिक बनवा दिया, महात्मा बुद्ध भेज गए, रूस नास्तिक कर दिया, अरे थोड़े कुछ दिनों में यहां भी नास्तिक ऐसे हो रहे थे, हम के कौन सी भक्ति करें थे, माया माया लूटने की होड़ ला रखी थी, बस किसी तरह बन जाओ। तो ये चाहता था कि भगवान से दूर हो जाए, गलत साधना करें, भगवान से कोई लाभ मिले नहीं, और ये फिर खत्म हो जाए कहानी। और भगवान ने चाहा था किसी प्रकार इस युग तक, इस समय तक इनमें थोड़ी बहुत आस्था भी जागती रहेगी ना, तो फिर थोड़ी भी जोत जलती रह जाए उसमें और घी डाल दे, और फिर शुरू होगी न्यो की उभरगी, तो दास डाल लेगा सत भक्ति का घी आपकी जलती हुई जोतों में, ये फिर प्रफुल्लित हो जाएंगी। फिर क्या कहते हैं, छिन में धरती पग धरूं और छिन में धरती पग धरूं और दादे संग सृष्टि संजो हो गए, पदम पद अमान न्यारा रहूं इस विद दिन दुनी वियोग, बोलत है धर्मदास जिंद जननी को थारी, तेरी माँ कौन है, तेरे माता पिता कौन है, कौन पिता परवेश कौन गतरेन अधारी, क्यों उतरे कल माही कहो सब भेद विचारम, और तुम निज पूर्ण ब्रह्म कहा अनपान आहरण आहरण, के जब आप परमात्मा हो तो फिर ये भोजन भाजन क्यों करते हो, भगवान भूखा है मेरा ग्रह। वाह भैया, कौन तुम्हारा धाम नाम सुमरण क्या हो कहिए, और तुम व्यापक कल माही कहो कहां साहेब रहिए। परमात्मा क्या बताते हैं, गगन सुन में हम रहे और व्यापक सब ही ठोरे, हर दरन हमार है ये फूल पान फल मोरे। परमात्मा कहते हैं कि मैं गगन मंडल में, गगन सुन में हम रहे, यानी सबसे ऊपर के स्थान पर आकाश में, अर्श कुरुष पर श्वेत गुमट है जहां सतगुरु का डेरा, और व्यापक सब ही ठोड़। परमात्मा बता रहे हैं कि मैं ऊपर रहता हूं सतलोक में, और मेरी शक्ति सब जगह व्यापक है, जैसे सूर्य कितनी दूर है पृथ्वी से, और उसकी उसका ताप उष्णता उसकी प्रकाश, और यहां पर पूरी पृथ्वी घूम रही है जिसके सामने है। इसी प्रकार परमात्मा बताते हैं, मैं कहीं पर भी हूं, मेरा रेंट विशेष ठिकाना तो वहां पर है, लेकिन वहीं से मेरी शक्ति सब जगह काम करती है। जंद कहे धर्मदास सुनो सतगुरु की वाणी, हम ही संत सुजान हम ही हैं सारंग पाणी, हम उतरे तुम काज सुन से किया पियाना। ओए होए, परमात्मा कहते हैं हम तेरे लिए आए हैं, और वहां से प्रस्थान करके गति करके आया हूं, और ये वेद बताते हैं परमात्मा वहां रहते हैं सच ऊपर के लोक में भवनों ऊपरी तिष्ठति, और वहां से गति करके आते हैं अच्छी आत्माओं के मिलते हैं। ये भगवान खुद कह रहे हैं, गरीबदास जी बता रहे हैं, हम उतरे तुम काज सुन से कियो पियो न, सुन शिखर से ऊपर के आसमानों की चोटी से मैं नीचे आया हूं, और शब्द रूप धर दे समझ बाणी सुर ज्ञाना, नहीं नाद नहीं बंद नहीं पांच तत्व आकारम, गुड़िला ज्ञान अमान हंस उतारू पारम, नरख परख कर देख नहीं भौतिक हमरे काया, हम उतरे तुम काज नहीं कुछ मोह न माया। मैं तो तेरे लिए आया हूं पुण्यात्मा तुझे समझाने के लिए, आप काल के जाल में फंस गए, और तेरे को दलदल से निकालने के लिए आया हूं। गगन सुन में धाम है वो अवगत नगर नरेश, अगम पंथ कोई पावे नहीं ये खोज शंकर शेष, बोलत है धर्मदास सुनो सतगुर सैलानी निरख परख से नारा भेद कुछ अकल अमानी सुन जंदे जगदीश सीस भगत शरण तुम्हारे और पोम ही आसन साज कहो तुम अदर अदारे। हमारी अकल ऐसी है नोके सुन जिंदा जगदीश तेरा पैर पग सीस सारा कुछ दिखे तू मेरे सामने बैठा नो का मैं ऊपर रहता हूं। अब तो इतनी अकल हमारे अंदर है। तुम सुख सागर रूप अनूप जो अदर रहा ही नहीं पिंड नहीं प्राण तो किससे बोलो गुसाई। अब नो का जब तेरा शरीर नहीं है और नो का भी देवताओं बोलो कैसे तो परमात्मा ने कहा कि ये शरीर देख मेरा तेरे जैसा नहीं है। सुन गगन में हम बसे हो पृथ्वी आसन थी हीरे धर्मदास दोखा दिलना तुम छानो नीर और खीर ना मैं जन्मू ना मैं रू और नहीं आऊं जाही। अब जैसे तुम जन्म मरकाते जाते हो ना ऐसा मेरा आना जाना नहीं है। शब्द विहंगम सुनने में ना मेरे धूप न छाही बोले जिंद सुनो धर्मदासा हमरे पिंड प्राण नहीं स्वासा गर्भ योनि में हम नहीं आए मादर पिदर ना जन नहीं जाए। शब्द स्वरूपी रूप हमारा क्या दिखलावे अचार विचारा सत्र ब्राह्मण की है हत्या जो चौका तुम देवो नित्या। अब क्या बताते हैं कि आप कह रहे कोई मैं पाप नहीं करता धर्मदास जो तेने चौका लिप्या है ना रोटी खाना खुना बनाने के लिए जो पोचा मारते हो लिप्या हर गोबर से इतने पोर्शन में ये 3x3 फुट का जो तेने बनाया इसमें कितना पाप लगा तेरे को। सत्र ब्राह्मण की है हत्या जो चौका तुम देवो नित्या और ब्राह्मण से हत्या जो होई जल स्नान करत है सोई। एक ब्राह्मण यानी भगत की हत्या का तुम कितना पाप बताते हो एक ब्रह्म हत्या का और कितने सुमन कर लो उस तो भी पाप ना कटे। तो ये इस तूने परमात्मा के चाहे छोटे बच्चे ने मार दे और चाहे बड़े को किसी राजा के लड़के को चाहे तो नवजात शिशु को मार दे कोई और चाहे 10-15-16 साल के को मार दे राजा को दुख बराबर व्या करे। तुम चाहे तो किसी मनुष्य ने मारो हर चाहे छोटे जीव ने मारते हो उसका पाप भगवान के दरबार में उसके बच्चे सबका एक जैसा दुख है उसको। तो इसलिए क्या बताते हैं तुम जो स्नान किया तेने इस तालाब में और देख तेरे लोटे में पानी जो तू इसमें भर के लिया था पवित्र जल कहते हो तीर्थ का देश में कितने कीट वो जीव चल रहे हैं तो वो एकदम सतप्त रहा फिर सुनता है भगवान की वाणी को। सत्र ब्राह्मण की है हत्या जो चौका तुम देवो नित्या ब्राह्मण सैंस 1000 हत्या जो होई जल स्नान करत हो सोई। चौके कृमि कीट मर जाई सूक्ष्म जीव जो दर्शे नाही तो दिखते नहीं वो भी बहुत से ऐसे जीव हैं जो मर जाते हैं लिपा पोती जैसे पोचे लगाते हो। तो पुणात्माओं यहां क्योंकि समय ये थोड़ा होता है और ज्ञान बहुत ज्यादा बताना होता है क्योंकि ये ज्ञान आपने कभी सुना नहीं। रामकृष्ण की महिमा तो थोड़ी बता दें तो भी आप सारी समझ जाते रहे घंटे में सारा कुछ फैसला हो लेता आपका हमारा प्रवचन का भी आप सुन लेते। अब इसमें प्रत्येक पॉइंट पे आपका क्लियर करना जरूरी होता है कि कहीं आपको और चिंता ना बन जाए मुश्किल से सिरे चढ़ते। अब ये समस्या ना आ जाए किसी भक्त के मन में कि पहले तो लिपा पोती करते थे आजकल तो ऐसी फर्श हो गया उसमें फिनाइल लगाए जाते हैं पोचे मारे जाते हैं तो पाप तो उनको भी होगा। हाँ होगा लेकिन ऐसा है कि जैसे कोई किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया और वो गाड़ी चला रहा है और उससे किसी कारण से कोई दुर्घटना हो जाती है और कोई इंसान भी मनुष्य भी मर जाता है तो सबसे पहले जांच अधिकारी उसका लाइसेंस देखेगा ड्राइविंग जो परफेक्ट आदमी है को जान के गाड़ी उठा लिया तो अनजान है तो फिर इसने बकवाद करी है जो भी चलाया नहीं जानता। तो यदि जिसके पास लाइसेंस है उसे कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो 100% बरी हो जाता है लगभग एक उसको सिर्फ यह है कि जान के मारा नहीं कोई गाड़ी में गड़बड़ होगी उसका बचाव बहुत हो जाता है। और जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो गाड़ी चला रहा है और उससे कोई ऐसी घटना घट जाती है सीधी सजा है जो उससे होनी है। तो और जिसके पास डुप्लीकेट लाइसेंस है वो भी दोषी वो भी सीधी सजा। तो इसीलिए जो जब तक आप इस परमेश्वर कबीर जी के उस सच्चे या तो भगवान आए थे यशदास को भेजा अभी तक, या जिन महापुरुषों को मालिक ने आदेश दिया था उनको कंप्लीट कोर्स आगे बताने की आज्ञा नहीं थी, जैसे आदरणीय धर्मदास जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, इनको गुरुपद दिया था भगवान ने, लेकिन इनकी से प्रतिज्ञा जला दी थी कि इस मार्ग को आगे नहीं बताना, सिर्फ प्रथम मंत्र देते रहना, और वो भी परंपरागत सही चलता तो लाइसेंस, वो भी जैसे एक हैवी लाइसेंस एक लाइट होता है, वो लाइट सा काम करे था, तो वो तक था उनके पास, प्रथम मंत्र देते थे बस, अरीब कतीचे ट्रला चला लियो ऐसा दे देंगे लाइसेंस बना के, कोई दिक्कत नहीं आओगे। तो उस समय तो नकली लाइसेंस जिसने और किसी के पास है, जब तक आप इस शरण में नहीं आए तब तक आप कोई पुण्य भी करते थे, कोई गुरु भी बना रखे थे, या बिना बनाए भी कोई साधना करते थे, उससे आपको या श्री राम कृष्ण विष्णु ब्रह्म की जो साधना ब्रह्मा ब्रह्म की साधना करते थे दुर्गा की, चाहे कोई गुरु भी उनका अधिकारी बना भी रखा होगा, तब तक दोनों ही आपने पाप और पुण्य दोनों भोगने पड़े, क्योंकि वो अधिकारी हैं ही नहीं इस गुरु पद पे आने के, ना ब्रह्मा को कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, ना विष्णु जी को, ना शंकर जी को, ना दुर्गा जी को, और ना इस ब्रह्म को, तो इनके द्वारा बनाए वो दिए गए उपदेश मंत्र भी इनकम्प्लीट, यानी वो पूर्ण ऑथराइज्ड नहीं है मोक्ष मार्ग के, तो इसलिए उनकी साधना करने से बताए मार्ग से पुण्य करने से तो दोनों मिलते थे आपको, पाप भी और पुण्य भी आपके दोनों डिपॉजिट होते रहे। तो इस प्रकार से आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सके। और अब क्या होगा, अब आपका जो लाइसेंस बनाया जाएगा इसमें आपसे, अब जैसे आपके वो पाप नहीं लगेंगे जो पोचा लगाते हो, कहीं स्नान भी करते हो, अपने कार्यवश आते जाते भी हो, और किसान खेती करता है उसमें इतना पाप बताया कि एक हलाई और 1000 कसाई, इतना पाप एक किसान को लगता है एक हलाई में। हलाई बोलते हैं एक एकड़ जमीन 200 फुट लंबी 40 फुट चौड़ी, इस क्षेत्र में हल से ऐसे गुड़ाई करते थे चक्कर काट काट के हल से, तो इस इतने पोर्शन में इतना पाप आली को हो जाता है 1000 कसाई को पाप लगता है। अब फिर उसे पुण्य भी होता है जब खेती वो तैयार करता है, जीव जंतु ना जाने को पशु भी खाते हैं, पक्षी भी खाते हैं, और चीटी भी ले लेकर बिलों में घुस जाती है, वो पुण्य होता तो दोनों लिख दिए जाते हैं उसके पाप फिर पुण्य भी। ऐसे ही मजदूर कस्सी से काटता है ना जाना कितने कीड़े मकोड़े काटता है, तो वो पाप उसके अलग लिखे जाएंगे। तो इसी पर जब हम इस परमात्मा की भक्ति से इस मंत्र सतनाम दास से उपदेश ले लोगे फिर आप पर ये लागू नहीं होंगे, क्योंकि आप ट्रेंड कर दिए गए हो। इच्छा कर मारे नहीं बिन इच्छा मर जावे, कह कबीर तास का पाप नहीं लगावे, और फिर लाइसेंस हो गया तो अब आपके पाप नहीं लगेंगे, जान के करियो ना। और गीता जी अध्याय नंबर 18 में भी स्पष्ट किया हुआ है कि ये कर्तव्य जो कर्म है आपके, अर्जुन ने पूछा जी पाप तो इनमें भी होता है कि जब तुम्हें परम संत मिल जाएगा उससे लाइसेंस आपको मिल जाएगा, यानी उपदेश मिलने के बाद, ये कर्तव्य कर्म है इनके पाप नहीं लगा करते। जो जैसे खेती करता है, कोई अपना मजदूरी करता है या आता जाता है अपने काम वश, इनसे पाप नहीं लगते फिर उस पूर्ण संत से दीक्षा लेने के उपरांत। फिर क्या बताते हैं कि आप कहां से आए हो धर्मदास जी? धर्मदास जी ने कहा कि मैं बांधवगढ़ से आया हूं मथुरा में। बांधवगढ़ यहां से कितनी दूर है कि लगभग 250 कोस, यानी 750-800 किलोमीटर। तो कैसे आए हो धर्मदास जी? भगवान ने पूछा कि पैदल आया हूं महाराज, पैदल आया हूं जी मैं। धार्मिक व्यक्ति थे कि परमात्मा ने कहा कि वहां से पैदल आते या गाड़ी जोड़ के लाते, कार मारते, पाप तो वही लिखे जाएंगे ना जिस उद्देश्य से जा रहे हो। तो वहां से यहां तक आपने कितने कदम रखे? पृथ्वी ऊपर पगजो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे।